हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये एक भगवान ने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो कल्याण में कार्य में लग रहा है व्यक्ति, जो योग के कार्य में लग रहा है, उसकी दुर्गति नहीं होती है, कम से कम उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और श्रील प्रभुपाद जी का संबंध में बहुत स्पेशल कमेंट है कि 80% उनके जो शिष्य हैं वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करेंगे, भगवत धाम की नहीं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए इस बात से। कारण यही है कि लोग 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन ये करने में ढील बताएंगे। प्रभुपाद जी को बहुत पता थी इसीलिए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया। प्रभुपाद जी ने लोगों को एनकरेज किया कि भक्ति को स्वीकार करें, क्योंकि अंततः गत्वा भगवान की भक्ति का प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता। और उसके आप आगे देखिएगा किस प्रकार से उसका भक्ति बनी रहती है। तात्पर्य, असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं कि भ्रष्ट होने के बाद भी, भौतिकतावाद में फंसने के बावजूद भी, भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है। भगवान उसके ऊपर, भगवान ऐसे तो भगवान की सब पे शुभ दृष्टि ही करते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान की प्रीति उस योगी के प्रति रहती है। ऐसा नहीं है उसका पतन हो गया तो भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि जो कार्य बहुत बहुत तपस्या करके व्यक्ति को वो लोक प्राप्त होते हैं, वो एक योगी को, एक भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, अगर वो पतित हो गया तो भी। इसका मतलब ये नहीं कि हम पतित हों, कहने का अर्थ ये कि अगर दैववश कुछ भी कारण से पतन हो भी जाता है तो भी पुण्यात्माओं का लोक प्राप्त होगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोसिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दे दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात यह है कि सदाचारी पुरुषों का जन्म लेता है, प्राय ऐसे लोग जो है ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पे उनको खाने पीने के बारे में बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब जगह पैदा हुआ है तो उसका पूरा जीवन जो है संघर्ष में ही बीत जाएगा। तो भक्ति करने के लिए एकदम गरीबी भी ठीक नहीं है, और ऐसा वातावरण जहां केवल भोग विलास की स्थिति हो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा से उसको ऐसा जन्म प्राप्त होगा जो एक ब्राह्मण का परिवार होगा या फिर धनवानों का होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे भक्तों का ऐसा ही होगा। हो सकता है कोई कोई भक्त असुरों के घर में पैदा हो जाए और उसकी भक्ति बहुत महान रूप से बढ़ती चली जाए, जैसे कि हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं। लेकिन जनरली भगवान ऐसा करते हैं, भगवान बता रहे हैं। अथवा योगी नाम एवा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुलों में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मान लीजिए थोड़ी बहुत भक्ति करी तो उसको पुण्यात्माओं का ग्रह प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी और ब्राह्मणों के जन्म लेने को मिलेगा, सदाचारी ब्राह्मण। लेकिन अगर बहुत समय तक भक्ति करी है और उसके बाद वो भ्रष्ट हो जाता है तो और अधिक लाभ प्राप्त होगा। भगवान यहां पे बता रहे हैं, जैसा हम देखते हैं, वो योगियों के यानी भक्त के घर में जन्म लेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त का मतलब, योगी का मतलब केवल ब्रह्मचारी नहीं होता है, भक्त भी योगी हो सकते हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, गृहस्थ लोग भी भक्त हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, क्योंकि जन्म तो एक गृहस्थ के घर में ही होगा, ब्रह्मचारी के यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है जन्म देने का। तो यानी कि एक भक्त के घर में अगर किसी इंसान का जन्म हो रहा है, मौका मिला है, तो बचपन से उसे भगवान का प्रसाद पाने का, भगवान का कीर्तन सुनने का, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है एक जीवात्मा के लिए। मतलब ये दिखाता है कि भगवान चाहते हैं कि एक बार कोई भक्ति में आ गया तो उसे बार बार मौका दिया जाए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तात्पर्य यहां पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक की को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। मतलब क्योंकि उनके उनके घर में, उनके जीवन में भक्ति का अनुशीलन होता है, तो भगवान की कृपा से बहुत सारे असफल योगियों को ऐसे परिवारों में जन्म लेने का मौका मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी के बारे में तो बड़ा अद्भुत लगेगा। शिला भक्ति ठाकुर जो उनके पिता थे, वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि उनको ऐसा एक पुत्र दे भगवान, जो कि भक्ति का प्रचार पूरे भारतवर्ष में कर सकें। तो फिर उनको यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जन्म हुआ था, और बचपन से ही उनके जो माँ के गर्भ में जो हमारी वो कह सकते नाल होती है, वो उनके शरीर से ऐसी लिपटी हुई थी जैसे कि ब्राह्मण जनेऊ होता है, ब्राह्मण का जनेऊ होता है। तो बड़ा अद्भुत हुआ था। और जब वो उनका जन्म हुआ था तो उसी समय रथ यात्रा हुई, और रथ यात्रा में उनकी माता जगन्नाथ जी के रथ पे गई और उनको जगन्नाथ जी के सामने रख दिया, तो जगन्नाथ जी की माला उनके ऊपर गिर पड़ी। तो हम देख सकते हैं कि अद्भुत जन्म था, और एक महान परमहंस वैष्णव के घर में उनका जन्म हुआ। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी के पिताजी को प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने देखा भगवान की भक्ति करते हुए, तो बचपन से ही उनके संस्कार बन गए और बचपन से ही उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा करना शुरू कर दिया था। तो ये दिखाता है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भक्ति किया रहता है तो उसको भक्त के घर में अगर जन्म मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। अब जन्म लेने के बाद क्या होगा, इसके बारे में श्लोक में बता रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी कृष्ण भावना की चेतना है वो नष्ट नहीं होती, अपितु जो बुरी चेतना है, जो व्यक्ति पापी है, वो भी आगे के जन्मों में पापी ही बना रहता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। जो व्यक्ति इस समय पुण्यात्मा है, अब उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो पहले भी पुण्यात्मा रहा होगा। तो यहाँ पे ये बात कृष्ण भावना में तो और अधिक एप्लीकेबल है कि कृष्ण चेतना में जितनी हम प्रगति कर लेते हैं वो कभी भी पीछे नहीं खत्म होती, भगवान स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के रूप में विख्यात है। ये भरत जो हैं, ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र है, ना कि दुष्यंत के पुत्र। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा, और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगुण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी कथा मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि भरत महाराज बहुत बड़े पूरे विश्व के राजा थे और उन्होंने जवानी में ही अपना घर बार त्याग करके जंगल में चले गए। उन्हें एक हिरण को देखा, हिरण के बच्चे को देखा एक्चुअली, और उसकी माँ मर गई थी, लेकिन हिरण के बच्चे को उन्हें अपना लिया और उसके प्रेम के चक्कर में सारी भक्ति भूल गए। और वो एक दिन ऐसे हिरण का बच्चा खो गया था तो उसको ढूंढते ढूंढते वो पागल हो गए और धम से गिर पड़े और उनके सर पे चोट आई, वो मरने चले गए। जब वो मर रहे थे तो हिरण का बच्चा सामने था और हिरण के बच्चे का स्मरण करने के कारण अगले जन्म में वो हिरण बन गए। लेकिन उस समय उनको याद रहा कि पिछले जन्म में क्या गलती करी है और इस कारण से वो बिल्कुल निरपेक्ष रहते थे, सूखी घास वगैरह खा के रहते थे और पुलह आश्रम में जाकर के रहने लगे। कालांतर में उनका शरीर छूटा हिरण का और उसके बाद फिर ब्राह्मण के कुल में जन्म प्राप्त हुआ, तब वो किसी से मिलते नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि भक्त का अगर मान लीजिए पतन हो भी जाता है तो भी उसकी दिव्य चेतना, भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बना रहता है। और इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय भी भक्त लोग जो अलग अलग लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो सभी का उत्साह का लेवल एक ही नहीं होता है और इसके लिए हमें किसी की भर्त्सना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म से व्यक्ति अलग अलग संस्कारों के, भक्ति के संस्कारों के कारण भक्ति कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग बहुत उत्साहित होते हैं, कुछ लोग उतने उत्साहित नहीं होते हैं, लेकिन सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए कि अपने स्तर से भगवान की भक्ति करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्लोक और देखेंगे, चलिए श्लोक को हम अगली बार देखेंगे कि क्या होता है भक्तों, किस प्रकार से उसकी चेतना को भगवान प्रेजेंट करते हैं। हरे कृष्ण।